आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, भारत से ऑस्ट्रेलिया आने के बाद यहाँ पर हमारे कई ऐसे संगी साथी हैं जिनकी मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, जो हमारे रिच फोक हेरिटेज को, इंडियन क्लासिकल हेरिटेज को, जो हमारी संस्कृति है, हमारे गीत है, हमारी भाषा है, उसको अपने स्तर पर बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे उनकी मदद करने कोई आए या ना आए, लेकिन वो लगे हुए हैं सैनिकों की तरह, संस्कृति के सैनिक जिसे हम कहेंगे, और अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं किताबों के जरिए और भी कई अन्य माध्यमों से। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान है, हमारी खास मेहमान है डॉक्टर सरिता बोरलिया मैकेंजी मैखार्ग। सरिता जी, SBS हिंदी में आपका स्वागत है।
बहुत बहुत नमस्कार, और आपको भी कि मुझे यहाँ मौका दिया मेरी संस्कृति को बाहर लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो मैं SBS को भी धन्यवाद कहती हूँ कि थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर।
सरिता जी, सबसे पहले तो आपका नाम बहुत लंबा है, सरिता बोरलिया मैकेंजी मैखार्ग, थोड़ा इसके बारे में बताइए।
एक्चुअली सरिता बोरलिया, जो मेरे पिताजी हीरा सिंह बोरलिया, पंडित हीरा सिंह बोरलिया हैं, मैं उनकी पुत्री हूँ। तो मुझे गर्व है कि अगर मैं अपना पिताजी का नाम भी साथ में शादी के बाद भी अगर कंटिन्यू करूँ तो ये मुझे, आई फील प्राउड ऑफ दैट
जी।
So, सरिता बोरलिया जो है, बोरलिया सरनेम, वो मेरे पिताजी का है। मैकेंजी मैखार्ग
थोड़ा स्कॉटिश आ गया,
स्कॉटिश है क्योंकि मेरे एक बहुत अच्छी स्टोरी है, क्योंकि मैं एक संगीत फैमिली से जुड़ी हुई हूँ और गैरी मेरे हस्बैंड हैं, तो वो इंडिया आए और हम लोग ऐसे ही कॉन्सर्ट में बैठे थे और वहीं ये सिलसिला शुरू हुआ। ही फॉल इन लव विद मी, उसके बाद मेरे पिताजी के पास आए और म्यूजिक और सब चीजें सुनी, उसके बाद फिर हम लोग,
मतलब हम दिल दे चुके सनम, आप ही की स्टोरी है थोड़ी सी।
हाँ, यही कह लीजिए।
आपकी दूसरी शादी नहीं हुई लेकिन आप मिल गए।
हाँ, तो मुझे एक आना, ही इज बहुत गैरी मैकेंजी मैखार्ग, यस, ही इज स्कॉटिश एंड वो यहीं ऑस्ट्रेलियन में है
जी। तो दो दो म्यूजिकल फैमिलीज का संबंध है। जहाँ पर बात करें, मालवा पे आते हैं, आप मालवा से बिलोंग करती हैं
जी।
अब मेरी जहाँ तक है, या ज्यादातर लोगों का है, कि जब भी बॉलीवुड में राजस्थानी फोक आता है सब एक बराबर है, तो मालवा राजस्थानी फोक में क्या अहमियत रखता है, थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को।
सी, मालवा एक सीमावर्ती पश्चिम उज्जैन, पहले बात तो मैं उज्जैन से आई हूँ और उज्जैन मालवा क्षेत्र में है
जी।
तो मालवा इस क्षेत्र मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में है, जो कि राजस्थान के कुछ सीमावर्ती इलाके उसमें आते हैं
जी।
तो इन मालवी, हमारे मालवी संगीत में भी और मालवी फोक म्यूजिक में भी कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का टच है
जी।
और उज्जैन में भी आप जाएंगे तो मंदसौर है, झालावाड़ है
जी,
रतलाम है, देवास है, ये सब पूरा मालवा क्षेत्र है
जी।
तो राजस्थान, अगर आप राजस्थान का संगीत सुनेंगे तो उसकी बोली अलग है और मालवी की बोली अलग है, पर कहीं कहीं जैसे राजस्थानी का अगर मैं बात करूं
जी, थोड़ा उदाहरण दे दीजिए।
तो उदाहरण है मालवा का, मैं पहले उदाहरण देती हूँ कि मालवा में है कि बोली, जो बोली जाती है कि तम कहीं करी रहा हो।
अच्छा,
आप कहीं, आप क्या कर रहे हो
जी?
तो तम कहीं करी रहा हो, अठ्याओ, वठेने जाओ, कहीं करी रहा हो, आओ, तुम्हारा नाम कहीं है
जी।
ये सब शब्द जो है वो मालवा यूज करते हैं।
और गीतों में किस तरीके का अंतर आता है?
गीतों में जैसे अगर मैं मालवा की बात करूं तो मालवा में थोड़ा सा गा के ही सुनाऊंगी मैं, क्योंकि बोली
बिना गाए तो हम भी जाने नहीं देंगे।
मैं तो भरा म्हारी सहेलिया भरे, मैं तो भरा म्हारी सहेलिया भरे, दल बात लीरो पानी सैया कुण तो भरे, दल बात लीरो पानी सैया कुण तो भरे। ये राजस्थान लोकगीत है
जी।
अब मालवा में जो है वो बड़ा बड़ा माठ केसर रंग भरिया, बड़ा बड़ा माठ केसर रंग भरिया, तो कंचन की पिचकारी हो कान्हा, कुणे खेले तम संग होली हो राधा प्यारी। तो इस तरह से
क्या बात
अंतर है
जी। अब जब बात करते हैं मालवा को, आप कोशिश कर रही हैं मालवा के फोक संगीत को, जो आपके पिताजी की विरासत है, उसको ऑस्ट्रेलिया में पॉपुलराइज करने की, और या विदेशों में, अन्य देशों में भी आप पॉपुलराइज उसको महत्व देने की कोशिश कर रही हैं, तो यहाँ पर कैसा रिसेप्शन मिलता है भारतीय फोक को, खास तौर पे मालवा फोक को?
सी, जब मुझे पहली बात तो जब मैं यहाँ पर मोनेश यूनिवर्सिटी में गई थी 1996-98 में, तब मुझे ये था कि मैं अपने ही लोक संस्कृति को आगे क्यों न बढ़ाऊं, पर मुझे वहां पर भी यही प्रॉब्लम आई कि मैं लोक संगीत पर काम नहीं है, यहाँ कैसे होगा
जी।
तब फिर मैंने सितार, क्योंकि मैं सितारिस्ट भी हूँ, मैं एक सितार बजाती हूँ और सुरबहार बजा रही हूँ, तो वापस से यूनिवर्सिटी जाना और रिसर्च करना तो एक मेरे लिए चैलेंज भी था
जी।
फिर मैंने वहाँ पर ये देखा कि वहाँ लोक संगीत पर यहाँ पर एक्चुअली काम नहीं हुआ है। राजस्थान में, इंडिया में भी आप देखिए, राजस्थान में काम हुआ है, राजस्थानी लोक संगीत को आगे बढ़ाया है, पर मालवी लोक संगीत को आज लोग नहीं पहचान रहे हैं
जी।
तो इसलिए मुझे, जब मैं मोनेश यूनिवर्सिटी में गई, उसके बाद हम लोगों ने यहीं फेडरेशन स्क्वायर में जैज़ कंसर्वेटोरियम का कॉन्सर्ट था, और हम लोग मोनेश यूनिवर्सिटी के पूरे 26 आर्टिस्ट थे। वहीं मैंने एक लोकगीत वहाँ की स्टूडेंट्स को भी सिखाया, मेरे को कलीग्स थे, और वहीं से हम लोगों ने लोक संगीत की शुरुआत की। फिर मुझे ये आइडिया है कि हम, प्रॉब्लम ये था कि मैं लोक संगीत को एक नई भाषा है तो उसको कैसे सिखाऊं
जी,
क्योंकि यहाँ वेस्टर्न है, एक शब्दों का भी डिफरेंस है कि मालवी हिंदी ही बहुत कम लोग बोल पाते हैं
जी
ठीक तरह से। तो फिर मैंने एक मेरी बुक पब्लिश की है कि मालवा के पारंपरिक लोकगीतों को लेकर, ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग्स ऑफ मालवा, और उसमें मालवी जो लोकगीत है उसको ट्रांसलिटरेटेड किया, और उसमें तो ताल जो यूज किए करते हैं और उसका मीनिंग एज वेल
जी,
और उसकी एक सीडी भी मैंने बनाई है ताकि लोग उसकी धुन सुनकर या रिसर्चर अगर चाहें तो उस पर रिसर्च कर सकें।
और इसको गीतों के रूप में आप लाने की भी कोशिश कर रही हैं संगीत के साथ?
संगीत के साथ, हाँ, मैं एक्चुअली एक और पॉइंट करूंगी कि मुझे यहाँ मेलबर्न में अभी कुछ ही कपल ऑफ मंथ्स अगो मिस्टर मोहित पंडित जी के साथ मेरी मुलाकात हुई है
जी।
और मैं चाहती हूँ कि आज की जनरेशन लोकगीतों को, मालवी लोकगीतों को कैसे एक्सेप्ट करें
जी,
तो हम दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके साथ कि कंपोजिशन वही रहेगी, मालवी लोकगीत को हम नहीं छेड़ रहे हैं
जी,
पर आज की जनरेशन के अनुसार हाउ वी हैव टू ब्रिंग इट आउट टू द टुडेज वर्ल्ड। सो हम,
तो मतलब सोल वही है, आत्मा वही है,
आत्मा
सिर्फ
वही है,
शरीर या जिसे कहेंगे कपड़े बदल दिए
जी, जी
आत्मा के
कपड़े भी नहीं बदले हैं, सिर्फ खाली ये कि आज की जनरेशन के अनुसार उसमें और इंस्ट्रूमेंट डाल दिए गए हैं,
थोड़ा और उसे इंटरेस्टिंग बनाया हाँ। जाएगा, म्यूजिकल जिसे कहेंगे, पारंपरिक करेंगे,
पारंपरिक और आज की जनरेशन सुन सके उसको।
आपने बात की कि किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है इस पूरे प्रोसेस में, जहां पर भारतीय फोक को बाहर रिसीव किया जाता है, और खासतौर पर आप जैसे लोग जो अपने स्तर पर लगे हुए हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, तो आपको लगता है क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो सकती है यहाँ पर, किस तरीके से इसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए?
मुझे ऐसा लगता है कि सभी यूनिवर्सिटीज में हमारी जो भाषा है मालवी लोक संगीत को आगे आना चाहिए
जी।
और यहाँ पर जो संस्कृति है आर्ट और कल्चर को लेके, क्योंकि मैंने देखा है बाहर की संस्कृति को हम आर्टिस्टों को बुला के हम काम करते हैं, पर क्यों नहीं हम हमारी जो भाषा है, और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है क्योंकि मेरे पिताजी ने, मतलब ये 400 साल पुराना जहाँ तक मुझे पता है
जी।
और 200 साल मेरी ग्रैंड माँ 105 ईयर्स वो थी
जी।
तो उनसे उन्होंने सीखा है, और मेरे पिताजी जो 85 ईयर्स ओल्ड हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि मालवी संगीत को या मालवी लोक संगीत को वो पहले व्यक्ति थे हैं जो 1982 में फ्रांस लेके गए, पूरे 5 लोगों का टूर था जिसमें मालवी नृत्य और मालवी ढोल, नगाड़ा, ताशा और पूरे मालवी लोक संगीत को वहाँ लेके गए। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं मालवी लोकगीतों को और अपनी मालवी संस्कृति को आगे लेके जाऊं, और ये कल्चर जो यहाँ का डिपार्टमेंट है
जी,
कल्चर, आर्ट और कल्चर से रिलेटेड है, ये हर जगह अगर एक सेमिनार भी अगर करें या उसको एक्सप्लेन करें तो शायद बढ़ सकता है आगे।
बिल्कुल, और हमारे सुनने वाले जो सरिता जी के साथ सहमत हैं और जुड़ना चाहते हैं, इनके साथ जुड़िए ताकि भारत की, खास तौर पे हमारी जो लोकगीतों की परंपरा है वो ऑस्ट्रेलिया में भी आगे बनी रहे। सरिता जी, SBS हिंदी में स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी धन्यवाद, और एस पी एस का मैं धन्यवाद करती हूँ. थैंक यू.
हरे रंग लावो रे बाल में रसिया, मारी केसर से भींगे जो नरिया, मारी केसर से भींगे जो नरिया, किन्ने रंगाई भारी केसर चुनरिया, किन्ने रंगाई भारी अंगिया, किन्ने रंगाई भारी अंगिया, भारी केसर से भीगे चुनरिया, भारी केसर से भीगे चुनरिया.